नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
आँखें हमारी खुलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारी।
आँखें हमारी खुलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे। आँखें
प्रभु ने आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन।
प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों हम भजन संहिता नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 106 तक का अध्ययन किया और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 107 से 109 तक। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, हम पर अनुग्रह प्रदान कीजिए, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखें, निश्चित रूप से आपका वचन हमें से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। यदि कोई बीमार है, कोई निराश है, कोई चिंतित है, कोई परेशान अवस्था में है, प्रभु आप उसकी सहायता करें, ताकि हर एक जीवन आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हमारे अध्ययन का विषय होगा व्यवस्था विवरण वर्ग, परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता और स्तुति। इसे हम भजन संहिता 107 से 150 में पाते हैं। भजन संहिता 107 से भजन संग्रह का व्यवस्था विवरण वर्ग आरंभ होता है। इस विषय में डॉक्टर गवलियन की टिप्पणी है, मूसा रचित पांचवी पुस्तक मुआब के मैदान के पूर्व इतिहास का पुनरावलोकन है, जिसमें आत्मा प्रेरित मूसा परमेश्वर की प्रजा के साथ परमेश्वर के व्यवहार का वर्णन करता है। अब वे प्रतिज्ञा के देश के सामने आ गए थे और शीघ्र ही उसमें प्रवेश करने जा रहे थे। भजनों के इस व्यवस्था विवरण वर्ग के आरंभिक भजन में इसराइल के शेष भक्त भविष्यवाणी के आधार पर पुनर्गठित देखे गए हैं, जो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने पर हैं। वे अपने युगों के अनुभव की ओर ध्यान कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनकी अगुवाई की, उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उन्हें कैसे दीन बनाया, उनकी कैसे रक्षा की और उन्हें कैसे संभाल करके रखा। हर एक युग के विश्वासियों ने अपने जीवन में भी ऐसे ही अनुभव प्राप्त किए हैं और वे आपके और मेरे जीवन में प्रासंगिक हैं। तो मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे भजन संहिता 107 से, जिसका विषय होगा परमेश्वर भला है। यह भजन प्रायः गलत समझा जाता है। मैथ्यू हेनरी जैसा महान टीकाकार, जिसने इस भजन के विषय अद्भुत टीका की है, वह भी इससे चूक गया था, क्योंकि उसने इस भजन के भविष्यवाणी का परिप्रेक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया था। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि अध्ययन के इस स्तर पर आकर आप इन भजनों के उचित परिप्रेक्ष्य को देखकर इनके गहन अर्थ को अंतर्ग्रहण करने में सक्षम होंगे। यह भजन एक भटकते हुए यहूदी का गीत है, जब वह प्रतिज्ञा के देश में पुनः प्रवेश कर रहा है। इस भजन का आज हमारे लिए भी एक विशेष अर्थ है और इसने पवित्र जनों के हृदयों युगों से आशीषित किया है। मेरे मित्रों, यह एक ऐसा भजन है जिसे मैं संगीत से संवारा हुआ देखना चाहता हूँ। यह भजन चार चार पदों में विभाजित है, जिनके मध्य मंडली गान व्यक्त है। पद 8, 21 और 31 ईश्वरीय विधान, वह तीर्थ यात्रियों का मार्गदर्शक है। मेरा सुझाव है कि इसे पुरुष वाणी में ऊंचे स्वर में एकाकी गीत स्वरूप गाया जाए। तो आइए हम भजन संहिता 107 उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मेरे प्रियो, हमें ऐसा ही कहने वाले अधिकाधिक विश्वासियों की आवश्यकता है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, शिकायत और आलोचना करते न रहें, यदि आप विश्वासी हैं तो सबसे पहले कहें कि परमेश्वर कैसा भला है। वह भला है, परंतु आज के संसार में उसका नाम माननीय नहीं है। परमेश्वर की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। प्रतिष्ठा अर्थात मनुष्य आपके विषय में क्या सोचता है। परमेश्वर के पास इस भरे पूरे संसार में अधिक मित्र नहीं है, न उसके विजेता, न उसके नाम के उठाने वाले। उसके गवाह भी तो बहुत कम है। उसके विषय एक अच्छा शब्द बोलने वाले, गवाही देने वाले बहुत ही कम है। यदि आप न माने तो निगाह उठा करके देखें, अन्य धर्मों को देखें, अन्य विश्वासियों को देखें जो गैर मसीही हैं। परमेश्वर के बारे में उनकी धारणा कैसी भयानक है। उनके लिए परमेश्वर विनाशक है, उद्धारक नहीं। एक ऐसा परमेश्वर जिसके निकट नहीं जाया जा सकता है, अर्थात आप निकट नहीं जा सकते। वह अपने सृष्टि में रुचि नहीं रखता है, न ही उससे प्रेम रखता है। आज का मनुष्य सभ्यता की चमक दमक नाम की शिक्षा और विश्वास की पतली परत में रहता है। उसके लिए परमेश्वर दूर रखने वाली वस्तु है, अनुकरणीय नहीं है। उसे एक अच्छा पड़ोसी नहीं माना जाता है। उसे प्रसन्न करना बहुत कठिन समझा जाता है। कुछ तो परमेश्वर को पुलिसकर्मी जैसा समझते हैं जो उन्हें किसी न किसी बात पर पकड़ने को तैयार खड़ा है। एक बालिका ने धर्मशास्त्र के पदों का संदर्भ देते हुए परमेश्वर का वर्णन किया, परंतु वह गलत कह रही थी। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप उसके विरुद्ध हैं। अधिकांश मनुष्य की यही धारणा है। यदि कोई परमेश्वर को भला कहता है तो वह उसका उद्धार प्राप्त जन ही होगा। परमेश्वर भला है, यह कहावत नहीं है, यह एक सिद्ध कथन है। मेरे प्रियो, यह न तो धार्मिक शब्दावली है और न ही नारा है, यह प्रचार भी नहीं है, यह एक सत्य है। हम भजन संहिता 107 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। परमेश्वर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से मनुष्यों को एकत्र कर रहा है। ये मनुष्य कौन है? ये इसराइली हैं। तब आगे लिखा है भजन संहिता 107 उसके 4-7 पद में, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि भजन संहिता 107 भजनों के व्यवस्था विवरण वर्ग का आरंभिक भजन है, और यह वर्ग मूसा के पंच ग्रंथ की अंतिम पुस्तक व्यवस्था विवरण के तुल्य है। यह भाग परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता और स्तुति से संबंधित है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 64-65 पद में परमेश्वर ने इसराइल को चेतावनी दे दी थी कि यदि उन्होंने पाप किया तो वे तीतर बितर किए जाएंगे, और यहोवा तुझे पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तीतर बितर करेगा, और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा। यह युगों से यहूदियों की दशा रही है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानी और देश से बाहर किए गए, परंतु परमेश्वर उन्हें फिर से संगठित करेगा और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा, अर्थात उन्हें स्वदेश लौटा लाएगा। यह परमेश्वर की प्रजा के जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था है। यह मुझसे भी कुछ कहता है। परमेश्वर ने इस भवसागर में उतरकर मेरा उद्धार किया है। यदि आपके लिए उसने ऐसा नहीं किया है तो वह करेगा। परमेश्वर की प्रजा के जीवन में उसके प्रावधान का यह महिमामय चित्रण है। परमेश्वर ने इसराइल को त्याग नहीं दिया है। सच तो यह भी है कि परमेश्वर ने न तो आपको और न ही मुझे त्यागा है। इस अंश में हमारे लिए संदेश यही है। आइए आगे देखें परमेश्वर का समाधान। वह बंदियों को मुक्त दिलाता है। अर्थात मुक्त करता है। हम इसे महिला वाणी में ऊंचे स्वर का एकाकी गीत बनाएं। यह स्तुति के ऊंचे स्वर में आरंभ होता है, वरन इस अद्भुत गीत से आरंभ होता है। भजन संहिता 107 उसके 8 पद से, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उस आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद हो। इस अंश में समूह गान अंत की अपेक्षा आरंभ में है। इस भजन में हम देखेंगे कि परमेश्वर बंदियों को मुक्ति दिलाता है और हम बंदी गृह में बंद एक मनुष्य को देखेंगे। यह भावी कष्ट है, महाक्लेश में इसराइल की दशा का वर्णन है। यदि उस समय कोई बंदी गृह में है तो परमेश्वर उसे निकालकर स्वदेश ले आएगा। विश्व युद्ध 2 के समय जर्मनी में असंख्य इसराइलियों की बंदी अवस्था की आप कल्पना करें। उनमें से सब के सब मुक्त नहीं हुए थे। मैं नहीं जानता कि उस समय कितने इसराइलियों ने इस भजन को स्मरण किया होगा। मेरे प्रियो, हम भजन संहिता 107 के 10 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। यह बंदियों की असहाय अवस्था का वर्णन है। तब हम भजन संहिता 107 उसके 14 से 16 पद में पढ़ते हैं, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े किया। आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने कैसे शमौन पत्रस को बंदी गृह से निकाला था और पौलुस और सिलास को कैसे रात के समय बंदी गृह से मुक्ति दिलाई थी। उसने तो हमें भी पाप के कारावास से, बंदी गृह से निकाला है और क्षमादान प्रदान किया है। परमेश्वर के पास सबके लिए क्षमादान है। अब कोई कहे, यदि क्षमादान है तो मुझे क्षमा क्यों नहीं मिलती? आज यदि आप कारावास में हैं, तो आपको क्षमा स्वीकार करना होगा। मुझे डॉक्टर हेरी रिमर की बात याद आती है। एक बंदी को राज्यपाल ने क्षमा दान दिया, परंतु उसने क्षमा स्वीकार नहीं की। कारावास अधिकारी दुविधा में पड़ गए। यदि एक कैदी को क्षमा किया जाए और वह क्षमा स्वीकार न करे तो क्या करें? अंत में उन्होंने न्यायालय में याचना की और न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि वह कारावास में ही रखा जाए। बंदी को मुक्त होने से पहले क्षमा स्वीकार करना होता है। प्रभु यीशु के पास आपके लिए क्षमा है। प्रभु यीशु में हमें पापों की क्षमा और अपराधों की मुक्ति प्राप्त है, परंतु आवश्यक है कि हम उसे स्वीकार करें। क्या आपने अपना क्षमादान स्वीकार किया है? क्या आपको पाप और पाप के दंड से मुक्ति मिल गई है? मेरे प्रियो, यह भजन परमेश्वर की करुणा का अद्भुत चित्रण है। इसराइल के लिए यह भविष्य में क्या अर्थ रखता है, आप विचार करें। अनेक इसराइली बंदी गृह में होंगे, परंतु परमेश्वर उन्हें निकालकर स्वदेश को ले आएगा। परमेश्वर की सुरक्षा वह समस्या का निराकरण करता है। यह नीचे के पुरुष स्वर का एकाकी गीत है और इसका आरंभ उसी समूह गान से है। हम भजन संहिता 107 उसके 21 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हम यह अवश्य करें। आगे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 के 22 पद में, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी उपस्थिति में आए तो स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। परिणाम स्वरूप इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 10 से 15 पद में लिखा है, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण ईश्वर ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं, इसलिए हम उसके द्वारा एक स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने हेतु आराधना में जाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात होठों से स्तुति गान करने के लिए। आप उसे किस बात का धन्यवाद चढ़ा सकते हैं? आप उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए धन्यवाद चढ़ा सकते हैं। वह इस पल तक आपको संभाल करके लाया है, आपको संभाल करके रखा है, हर एक जरूरतों की उसने पूर्ति की है। आइए हम भजन संहिता 107 उसके 23 और 24 पद को पढ़ें। लिखा है, जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। उस युग में नाविक होना एक महान संकट का पेशा या धंधा था। समुद्री यात्रा पर निकलने वाला नहीं जानता था कि वह लौट कर आएगा भी या नहीं। वह आज की यात्रियों की तुलना में परमेश्वर पर ही निर्भर था। मनुष्य प्रायः इस पर ध्यान नहीं देता है। वह तो किस्मत को मानता है कि उसके मरने का दिन निश्चित है, परंतु ऐसे समय परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन छोड़ देना एक अद्भुत विचार है। मेरे मित्रों, आगे हम देखते हैं परमेश्वर का सामर्थ। वह अपनी प्रजा को प्रसन्नता देता है, यह अंतिम पद है। तो आइए हम भजन संहिता 107 उसके 31 पद को पढ़ें। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। यह समूह गान है और हम सब इसमें सहभागी हो सकते हैं, क्योंकि हमें आज अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ की आवश्यकता है। कहा जाता है कि एक दिन थॉमस ऑक्विनस पोप के पास गए तो वह कलीसिया के पैसे गिन रहे थे। पोप ने कहा, सर थॉमस, अब कलीसिया लंगड़े भिखारी से यह नहीं कह सकते कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। थॉमस तुरंत पलटे और बिना रुके पोप से बोले, अति सत्य है श्रीमान जी, और कलीसिया उस लंगड़े मनुष्य से यह भी नहीं कह सकती, उठ और चल। आज हम समस्या को समझते हैं, सामर्थ को नहीं। आरंभिक कलीसिया परमेश्वर के सामर्थ को पहचानती थी। एक बार एक तेल कंपनी का प्रदर्शनी लगा हुआ था और जहां पर काफी दर्शकगण थे, लेकिन ऐसा हुआ कि उसकी गैस समाप्त हो गई। दर्शकगण हंसने लगे क्योंकि तेल कंपनी की गैस समाप्त हो जाना आश्चर्य की बात थी। मुझे कलीसिया का ध्यान आया। जी हाँ, हम अति सुंदर दिखते हैं, हमारी शैली, हमारी इमारतें, हमारे कार्यक्रम, आराधना, प्रचार, सब कुछ, परंतु हम में सामर्थ नहीं है। कलीसिया को सामर्थ की आवश्यकता है। प्रत्येक विश्वासी को सामर्थ की आवश्यकता है। सामर्थ से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सामर्थ से रहित होने का एक कारण है कि हमें जैसी स्तुति परमेश्वर की करनी चाहिए, हम वैसी स्तुति नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भजन संहिता 107 के 32 पद में लिखा है, और सभा में उसको सराहें और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। जी हाँ, हमें परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। स्तुति सामर्थ की अग्रगामी है। स्तुति रॉकेट में गैस भरकर उसे अंतरिक्ष में भेजती है। भजन संहिता 107 उसके 43 पद में लिखा हुआ है, जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। एक बालिका ने प्रेमपूर्ण दया की व्याख्या की। यदि आप अपनी माता से डबल रोटी और मक्खन मांगते हैं और वह आपको दे दे तो यह दया है, परंतु यदि वह उस पर जाम लगा दे तो वह उसकी प्रेमपूर्ण दया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की प्रेमपूर्ण दया हम पर है जो उसके हैं। ये अनंत हैं जो हमें दी गई हैं। मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 107 समाप्त होता है और अब हम आगे देखते हैं भजन संहिता 108 में, जिसका विषय है इसराइल की स्तुति और अधिकार। यह दाऊद का एक और भजन है और एक अद्भुत भजन है। इसका प्रथम अर्ध भाग भजन संहिता 51 के सदृश्य है और अंतिम भाग भजन संहिता 60 के सदृश्य है। यही कारण है कि यह आलोचना का विषय बन गया है और पैबंद माना जाता है, परंतु ऐसा कदापि नहीं है। यदि भजनों के अंश निकालकर उन्हें जोड़ा भी गया तो उसमें परमेश्वर का कोई उद्देश्य अवश्य है। तो आइए हम भजन संहिता 108 उसके एक पद को पढ़ें। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। यह इसराइल के शेष भक्त हैं जिन्हें मुक्त कराकर घर लाया गया है और वे प्रभु की स्तुति और बड़ाई करते हैं। पिछले भजन में भी हमने यह देखा था, परमेश्वर इसराइल को स्वदेश लौटा लाएगा, वह संपूर्ण विश्व में उन्हें एकत्र करेगा और जब वे स्वदेश में होंगे तब वे प्रभु परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। भजन संहिता 108 उसके 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। ये शब्द मेरे विचार में इसराइल के शेष भक्तों के हैं जिन्हें मुक्त कराया जाएगा। वे विभिन्न गोत्रों में भूमि विभाजन और अपनी धरोहर प्राप्ति को देख रहे हैं। वह समय कैसे बड़े आनंद का होगा। मेरे प्रियो, अब हम आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 109 अध्याय में देखेंगे। विषय है मसीह संबंधित मसीह की दीनता। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, यह एक मसीह संबंधित भजन है। यह प्रभु यीशु की दीनता का चित्रण है और साथ ही प्रतिशोध का भी। इसे यहूदा इस्करियोती का भजन भी कहते हैं क्योंकि शमौन पत्रस ने यहूदा के संबंध में इस भजन का संदर्भ दिया था, जिसे हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 20 पद में देखते हैं। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। जी हाँ, पत्रस ने यहूदा के पद के लिए किसी और का चुनाव करवाया था। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा हमने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
चाहे वो सुख हो, चाहे